हेलो एवरीवन, वेलकम टू होली स्पेशल एपिसोड ऑफ दम रजू सचान शो। आइए इस होली को कुछ डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस होली खत्म करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को। आइए इस होली जलाते हैं स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन को। फिजिकल हेल्थ के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2019 में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर 8 में से एक इंसान मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहा है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या होता है, एंग्जायटी और डिप्रेशन से आप कैसे बच सकते हैं और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। और इसके लिए मेरे साथ हैं 15 सालों से काउंसलिंग सर्विसेज और अपने एनजीओ जिंदगी तुझे सलाम में एज अ काउंसलर वर्क कर रही पर्सनैलिटी डेवलपर कोच मीनाक्षी मिश्रा मैम। वेलकम मैम।
थैंक यू मृदुल।
तो मैम, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें कि मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इश्यूज एक्चुअली में होते क्या है।
थैंक यू मृदुल, आपने बहुत अच्छे से जो बात कही है कि हम लोग को मेंटल हेल्थ पे खुल के बात करनी चाहिए। तो जैसे कि फिजिकल हेल्थ के बारे में, जैसे हम सभी जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ डिपेंड ऑन अवर हेल्दी ऑर्गन्स।
जी,
अगर हमारे ऑर्गन्स हेल्दी हैं, ठीक हैं, तो हमारी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली सही होगी। उसी तरह मेंटल हेल्थ डिपेंड्स ऑन अवर थॉट क्वालिटी। आप जो भी एनवायरमेंट से रिसीव करते हैं, वो उसकी जो क्वालिटी है मेंटल हेल्थ की, वो आपके थॉट्स, आपके विचारों से बनती है। तो वो जब आप थॉट्स लेते हैं, जैसे आपने कईयों ने इसके बारे में सुना होगा कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे आप फील करेंगे, वैसे ही आपका बिहेवियर होगा और वैसे ही एक्शन, एंड देन वो ही आपका फ्यूचर बन जाएगा।
जी मैम।
तो हमारा सारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने थॉट्स को कैसे, उनकी क्वालिटी को बेटर रखें। तो मेंटल हेल्थ इशू के बारे में जैसे आप पूछ रहे हैं, तो जब हमारे एनवायरमेंट से हम जो भी रिसीव करते हैं, जो भी हमारे सेंसरी मोड से जो भी हम रिसीव करते हैं थॉट्स आते हैं, तो वो हमारे सोच, हमारे विचारों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है
जी।
तो उसके साथ ही हमारे जो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं वो हमारे मेंटल इश्यूज को बढ़ा देते हैं। जैसे कोई भी आपने नेगेटिव थॉट, किसी ने कोई बात कही और आपको वो पसंद नहीं आई
जी।
बस आपने उसको क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि जो बात कही करी गई है वो हमें पसंद नहीं आई और वो हमें कैसी फीलिंग दे गया, हमें बुरा लग गया, हम उससे उदास हो गए, हमें उससे इरिटेशन हो गई, हमें उससे गुस्सा आ गया, ये मेंटल इश्यूज बन जाते हैं इसके लिए।
ऑलराइट मैम, तो मैम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के पॉसिबल रीजंस और सिम्टम्स के बारे में बताइए।
मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पॉसिबल रीजन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, होता है हमारे पास लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस नहीं होती
जी।
जब हम बातों को, किसी की भी बातों को डायरेक्ट उसी तरह ले लेते हैं जैसे हमने कही है और करी गई, बिना उन बातों की डीप एनालाइज किए हुए या प्रोसेस किए हुए या सही समय उसको नहीं दिया, बस उस भाव को सही से समझा ही नहीं, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, तो वो प्रॉब्लम आएगी आएगी, आपके वो रीजंस होंगे ही। सपोज किसी ने आपके, आजकल ये चीज बहुत चली है कि हमारे टाइम पे तुरंत कॉल उठ जानी चाहिए, हमने मैसेज ड्रॉप नहीं किया कि हमारी मैसेज का तुरंत रिप्लाई आना चाहिए, और हम ये चीज सोच ही नहीं पाते हैं कि कोई भी किसी भी दूसरे एनवायरमेंट में जैसे ही जाएगा तो वहां के एनवायरमेंट की एंगेजमेंट उसको एंगेज कर देगी, उसका माइंडसेट चेंज कर देगा। सपोज हस्बैंड या वाइफ अपने वर्क प्लेस में जैसे ही जाएगा तो वो घर की चीजें नहीं होंगी उसकी, तो वो उस थॉट में होगा ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि आपने सडनली कोई बात चाही कि अच्छा मेरा मूड है अब बात करने का, तो वो वर्किंग प्लेस में है और वो वैसे रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, तो हम उस डीप एनालाइज किए बगैर हम उससे नाराज हो जाएंगे, हम उससे खफा हो जाएंगे, उसने तुरंत रिप्लाई नहीं किया या उसने देख तो लिया। सपोज आपने, आजकल ये भी बड़ा नाटक है कि ब्लू टिक हो गया, सीन हो गया और रिप्लाई नहीं किया यानी इग्नोर किया, हम खुद ही सोच लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो रिप्लाई करने ही वाला हो और सडनली उसका बॉस ने कहा हो कि अरे क्या वर्किंग प्लेस में आप पर्सनल मैसेज कर रहे हो, काम करो,
जी
या आप स्टडी में हैं, टीचर ने डांट दिया, ये रखिए आप अपना मोबाइल, तो हम ये सारी चीजें नहीं समझ पाते। जब सामने वाला बाद में हमें आके कहता है कि हम जवाब देने वाले थे तो ऐसा हो गया, तो हम तुरंत ही कूल डाउन हो जाते। तो
जी
ये हमारी जो प्रोसेसिंग है, ये रीजन है, ये हमारा मेंटल प्रोसेस ही नहीं हम करने देते अपने किसी चीज को। तो ये एक्सेप्टेंस अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है और हमारे ये प्रॉब्लम्स और चीजें आ जाती हैं, और सिम्टम्स भी इसीलिए आ जाते हैं। हमें इरिटेशन आ जाएगी, एंगर इश्यूज आ जाएंगे, हम बहुत जल्दी डिसहार्टेड हो जाएंगे।
जी मैम, तो मैम ये बात हो गई मेंटल हेल्थ के रीजंस और सिम्टम्स की, तो अब बताइए कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ।
मेंटल हेल्थ में जैसे मैं अपने सेशंस में भी कहती हूँ, हमारी वर्कशॉप चलती हैं, तो उसमें हमारी सबसे जरूरी होती है कि मेंटल हेल्थ आपकी डायरेक्ट जो है फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है,
जी
क्योंकि आपके शरीर का सबसे ऊपर जो हिस्सा है वो ब्रेन है, और ब्रेन जो है आपका सारा दिन काम करता है, सारा दिन, और उसमें अनगिनत विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं कि आपके पास्ट के भी आएंगे, आपके फ्यूचर प्लानिंग्स भी आएंगी, आपके प्रेजेंट का जो आप एक्शन कर रहे हैं वो भी चल रहा होगा, तो सारे दिन दिमाग काम करता है, इवन आपके सोने के बाद भी। तो आप अगर इसको कूल डाउन कर लें, रिलैक्स कर लें, तो आपके मॉर्निंग में उठ के अगर आप वॉक कर सके, 10 मिनट का मेडिटेशन खुली हवा में ले जाए, या यूं ही घूम लीजिए, कुछ ना करिए, आपसे नहीं हो पा रहा मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप यूं ही ताजी हवा में सुबह घूम लीजिए, मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, वो आपके थॉट की क्वालिटी में बेटरनेस ले आता है, वो बेटर होती चली जाती है, और आपके फिर सारे दिन के, फिर कोई भी कुछ भी कहे तो आपको उतना इरिटेशन नहीं होता है, क्योंकि आपने पहले ही जो है एक रिसीविंग अच्छी कर रखी है, अपना मूड जो है अच्छा कर रखा है, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर रखा है, तो आप भी इरिटेट नहीं होते हैं, क्योंकि आप अपने रूटीन को देखिए, सडनली आप उठे और जल्दी जल्दी तैयार हुए, तो आपने ही अपनी लाइफ में इतने तेजी कर रखी है, तो सामने वाला अगर कहीं कुछ डिले कर देते हैं तो वही चीजें आपको परेशान कर देती है, और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जब
जी
मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है तो आपके फिजिकल तुरंत नहीं पता चलती, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर वो चीजें आ जाती हैं, आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा, अगर थोड़े दिनों में नई एज में डायबिटीज की प्रॉब्लम भी इसीलिए आ रही है, तो स्ट्रेस की वजह से, तो ये सब छोटे छोटे चीजों को आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अपने लाइफ स्टाइल रूटीन में एक वॉक, मेडिटेशन को इंक्लूड कर लेते हैं।
ऑल राइट मैम, तो मैम मेंटल हेल्थ को मैनेज करने में सपोर्ट सिस्टम, हमारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हम किस तरह से इस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं।
सपोर्ट सिस्टम के बारे में मृदुल मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें सबसे पहला रोल और सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का ही है, क्योंकि यहाँ ये जन्म से शुरू हो जाता है, और बच्चा पूरी तरह से सिर्फ पेरेंट्स की तरफ देखता है, इतना वो सिबलिंग को भी नहीं देखता अपने,
जी
वो पेरेंट्स की तरफ देखता है कि वो हमें क्या सपोर्ट करते हैं, उसी से उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम उनसे एक इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपने मोहब्बत दी है बच्चे को, भरपूर प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है, और उसको एक समझदारी दी है, उस पे एक विश्वास दिखाया है, तो वो बच्चा आपके पास आएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को कहेगा। लेकिन होता क्या है कि सडनली हम लोग जगते हैं एज ए पेरेंट्स, जगते हैं और 10th में सोचते हैं कि अब इसके इश्यूज हम लोग सीरियसली ले सकते हैं, उससे पहले इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अब हम सडनली इसको अपना फ्रेंड बना लेंगे और ये मुझे फ्रेंडली होके सब बता देगा, लेकिन वो चाइल्डहुड से आपके एक्शंस को देख रहा है कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया, एज ए पेरेंट्स कैसे टैकल किया। आप बच्चा आपके पास जब अपनी छोटी छोटी चाइल्डहुड से प्रॉब्लम लाया तो आपके रिएक्शन कैसे थे, तो इस सारे चीजों का एक्सपीरियंस जब बच्चा करता है और उसको वो विश्वास नहीं आता, उसे लगता है इन्होंने अपनी प्रॉब्लम या अपनी लाइफ में इतना परेशानी की हुई है तो ये मेरी प्रॉब्लम में क्या करेंगे, तो वो ट्रस्ट नहीं होता है। दूसरा क्या है, हम एक पेरेंटिंग को एक फॉर्मूला बना लेते हैं, एक खेती बना लेते हैं कि सब एक माहौल में ऐसी चल रही है तो हम भी अपने घर में खेती करेंगे। लेकिन जैसा, ये एक कस्टमाइज सोल्यूशन है, जैसा आपका बच्चा है, जैसा उसका नेचर है, वैसे नर्चर करिए। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप कह पाए समाज में कि मेरा बच्चा डिफरेंट है, तो इसको डिफरेंट ही हम तरीके से पालेंगे।
जी
वो
मैम,
कांच के दिल के साथ बना हुआ है, वो लोहे के दिल से नहीं बना हुआ है, तो हम इसे हैंडल विथ केयर ही संभालेंगे। हम इसके साथ उसी बात नहीं करेंगे, तब बच्चा आपको समझेगा कि हाँ, जिन्होंने पाला है वो वाकई एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बन के आए। लेकिन हम लोग कब फैसिलिटेटर हो जाते हैं, सिर्फ पेरेंट्स में खाना देना, आपकी सुविधाओं का ख्याल रखना, ये सब नहीं होता है। ये पेरेंटिंग की एक बहुत बड़ी मिथ है, जो जिसकी वजह से कई बच्चे बाद में ना वो पेरेंट्स से बहुत डिटैच हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हम अपनी प्रॉब्लम कहाँ ले जाएं।
जी
और फ्रेंड सर्कल अगर अच्छा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम इसको ना जैसे डिवाइड कर देते हैं, पर्सनालिटी को चार चीजों में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा एक चार्ट बनता है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक बॉक्स है जो जमाना देख रहा है पर्सनालिटी का, एक जो पेरेंट्स देख रहे होते हैं, एक इनबॉर्न टैलेंट है जो बच्चे को पता ही नहीं और पेरेंट्स भी नहीं देखते हैं,
जी
और एक होता है उसका ऐसा बॉक्स जिसमें वो डार्क है, वो रियल में वो क्या है, वो वहां पे है,
जी
वो अपने डार्कनेस सब वही रखता है। उसके वो क्या बुरा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, कितना वो उदास है, कितना डिसहर्टेड है, सब उसमें रख रहा है। ये बॉक्स जिस बच्चे का जितना छोटा होगा वो उतना ही हैप्पी होगा। लेकिन नॉर्मली ये बड़ा ही हमें मिलता है, जब हम ये टेस्ट करते हैं हमेशा हमें बड़ा मिलता है बाकी बॉक्सेस के कंपैरिजन में। तो हमें पेरेंटिंग को बहुत ही सोच समझ के ही इस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए और समझना चाहिए। बच्चों को सपोर्ट सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं।
जी मैम, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम आपने। तो मैम, क्या डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों में मेंटल हेल्थ को लेकर एटीट्यूड भी डिफरेंट होता है? और अगर हाँ, तो हम उस गैप को किस तरह से कम कर सकते हैं?
जी हाँ मृदुल, हम एज गैप ग्रुप को अपनी, हर एज गैप की अपनी साइकोलॉजिकल और मेंटल कॉग्निशन डेवलपमेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हर एज की अपनी एक सोच होती है, उसकी वजह से उसका कारण होता है उनकी लाइफ एक्सपीरियंस भी अलग हो जाते हैं, तो जिसको हम लोग जनरेशन गैप कह देते हैं। अब क्या है कि उसको दोनों तरफ से कम कर सकते हैं, एक तरफ से नहीं। जैसे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं पेरेंट्स ही बन के रह गए और नए समय के हिसाब से अपने को अपडेट ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते चेंजेस को।
जी
आप घर के फर्नीचर चेंज कर देते हैं, हम तो कई पेरेंट्स को ऐसे जानते हैं, वो एकदम से सडनली हमसे कहते हैं कि ये तो हमारे परिवार में कभी नहीं हुआ है और ये ऐसी बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। देन मैं कहती हूँ कि आपके घर में बहुत पहले रेडियो था, कि आज आप एक बहुत बड़ा 50 इंच का टीवी नहीं लगा रहे हैं।
जी मैम,
तो ये चेंजेस हो रहे हैं जो कि एक मेटेलिस्टिक है, जिसका कहीं कोई सिवा एंटरटेनमेंट यूज के कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे चेंजेस आप नहीं कर रहे हैं जो आपकी फैमिली को जोड़े रखा रख सकता है।
जी
तो एक्सेप्टेंस नहीं है, चेंज नहीं होना चाहते हैं और अपने ब्रेन को अपडेट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं आप करने की क्या जरूरत है, आप जो करेंगे ये जनरेशन करेगी। तो हम सबसे वही पुराने वर्जन बने रहते हैं। और बच्चा कैसे उस जगह, जब बहुत कम्युनिकेशन के टॉपिक ही नहीं रह जाएंगे सेम, तो कोई भी बच्चा ही नहीं, कोई भी आपसे बात ही नहीं करेगा। आपके पास बहुत कम अगर टॉपिक होंगे तो वो क्या बात करने आएगा कि आपने खाना खा लिया और बताइए आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और फ्यूचर प्लान क्या है। तो ये तीन टॉपिक के अलावा आपके पास बच्चे के साथ बात करने के लिए और क्या टॉपिक है। तो हम लोग इस चीज को पेरेंट्स को कहना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स को, कि आप अपने को डेली अपडेट करिए। और जो बच्चे हैं वो ये समझे कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर की जो एज है उसके हिसाब से, उनके साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से उनको समझें कि हाँ, ये तो ये ऐसा कहेंगे, ये इस उम्र में इस तरह की सोच हो ही जाती है।
जी
तो थोड़ा उनके अंदर पेशेंस और जाना चाहिए और इनके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उन चेंजेस को लेके, तो ये गैप अपने आप ही भरने लगेगा।
ऑल राइट मैम, तो मैम स्टूडेंट्स पर एकेडमिक प्रेशर बहुत होता है, तो उनके लिए भी कुछ टिप्स दे दीजिए, वो स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर सकता है।
एकेडमिक स्ट्रेस के कई कारण हो जाते हैं, जैसे मेरी नजर में कि अगर एकेडमिक स्ट्रेस आजकल देखते हैं फर्स्ट क्लास से भी शुरू हो गया है, अब फर्स्ट से 12th तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है,
जी
लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट हैं, आप लास्ट मोमेंट में काम करते हैं, तो आप अपने आप ही, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बच्चा अपने आप ही ऐसा अपने लिए माहौल बना लेता है कि वो एक स्ट्रेस और प्रेशर में आ जाता है। तो
जी
अगर बच्चा डिसिप्लिन रहे, लास्ट मोमेंट के लिए कोई चीजें ना करे, तो और टाइम मैनेजमेंट उसका अच्छा हो, पेरेंट्स इसमें, टीचर उसमें हेल्प करें, तो ये प्रेशर, ये स्ट्रेस उसका कम हो जाता है। दूसरा, आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं उसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि वो कैरियर गोल्स के हिसाब से सब्जेक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें फेल होने के डर से वो स्ट्रेस आ जाता है।
जी
तीसरा क्या होता है कि एक्चुअल में हम अपनी पोटेंशियल को समझे बगैर कैरियर को चूज कर लेते हैं। रियल पोटेंशियल हमें पता नहीं होता है, हमको वही 5-6 विकल्प पता है और सारी दुनिया उसी में बह रही है, हम भी कर लेते हैं, और अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि हम इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भरोसा ही नहीं दिलाया गया है पेरेंट्स ने, टीचर ने, कि अगर तुम कुछ और भी करोगे या कुछ साल कुछ भी नहीं करोगे तो भी तुम बेटर कर लोगे, अपने जीवन के लिए बेटर कर लोगे, ऐसा कोई विश्वास दिलाने को ही नहीं तैयार होता। हम लोग ये कहते हैं अभी पढ़ लो, कुछ कर लो, ये कंपटीशन दे लो, वरना तुम्हारा कहीं कोई गुजारा नहीं होगा। ये जो डर है, ये जो बातें हैं, ये हम जो बच्चे में डालते हैं अपने डर, वो बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरे तरह से मार देता है, उसके अंदर उन्हीं चीजों को चूज करने का ऑप्शन आ जाता है, चाहे वो पसंद हो चाहे ना हो, उसे लगता है शायद मैं ही इंजीनियर ही बनूंगा या डॉक्टर ही बनूंगा तभी मेरा बेड़ा पार होगा, और वरना पेरेंट्स ही जब कह रहे हैं ये तो मुझे पैदा किए हैं, इन्होंने तो मुझे पाला है, तो ये तो सही कह रहे होंगे, तो ये कुछ ना कुछ देख ही रहे होंगे, तो वो सेल्फ एस्टीम को इतना लो कर देते हैं टीचर्स और पेरेंट्स मिलके कि उनको पता ही नहीं होता है कि वो जो एक पौधा है उसकी मिट्टी में वो क्या डाल रहे हैं,
जी
तो स्ट्रेस तो ऑटोमेटिकली आएगा। ऐसे में हमारे पास जो है टेस्ट होते हैं जिससे हम जो है बच्चे की लर्निंग स्टाइल, उसका पोटेंशियल चूज करके उसको करियर सजेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को ये करना चाहिए, क्योंकि 1 से 12 तक बच्चा फाइनेंशियली तो इतना स्ट्रांग होता नहीं है, वो पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, तो वो कैसे अपना कोई एप्टीट्यूड टेस्ट या पोटेंशियल टेस्ट करा सकता है,
जी
इसमें पेरेंट्स को आना चाहिए।
जी मैम, मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि हमारी ऑडियंस आपके ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस किस तरह से ले सकते हैं।
मृदुल, एक्चुअली मैं ऑनलाइन करती हूँ, सीट के नाम से करती हूँ,
ओके
उसमें इंस्टाग्राम में मेरा है, सीट के नाम से है ऑनलाइन काउंसलिंग,
ओके
और SEED ऑनलाइन ही काउंसलिंग करती हूँ। जल्दी कोरोना से पहले मैं उसको फेस टू फेस भी करती थी, लेकिन ये कोरोना के बाद से काफी चीजें मेरी चेंज हो गई, तो ऑनलाइन नंबर है हमारा 9581024267, इस पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 5 मिनट की जो कॉल है जिसमें हम आपकी बात सुनते हैं वो फ्री है, देन आप हमारे सेशंस बुक करते हैं, 500 चार्ज है, और आपकी पूरी तरह से हेल्प होगी, और अदरवाइज हमारा NGO है जिंदगी तुझे सलाम, जो आज हम 10 साल से कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे ही है, अब वो दुबई से भी ऑपरेट होता है, उस पे हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर लिया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उस पे भी, वो जल्दी ओपन होने वाला है, उसको भी हम लोगों ने बीच में ये जब कोरोना हुआ था तो हम लोगों ने उसे बंद करना पड़ा, तो अभी उसको, उस सर्विस को भी हम ओपन करना जा रहे हैं जिसमें ये कॉस्ट भी किसी को भी नहीं देनी पड़ेगी, वो जब चाहे किसी भी से बात करना चाहे, तो हमारे उस पैनल में कई साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हमारा एक पूरा पैनल है, और जो भी उस समय फ्री होता है वो कॉल रिसीव करता है, और आप 24 आवर्स उस नंबर को यूज कर सकते हैं।
ओके मैम, तो मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि मीनाक्षी मिश्रा मैम की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैम अब मैं चाहूँगा कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के बारे में बताएं, हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में किस तरह से चेंज कर सकते हैं।
पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत वो हो गया है, लेकिन देखिए, ईश्वर ने हमें बनाया है, अल्लाह ने हमें बनाया है, तो हमारे अंदर सारे 9 इमोशंस को डाले हैं। प्यार
जी
भी डाला है, विश्वास भी, करुणा भी, परोपकार भी, डर, द्वेष, घृणा, अहंकार, क्रोध, सब कुछ डाला है। लेकिन उसको क्यों डाला है ये कोई नहीं समझता है। उसको इसलिए डाला गया है कि आप अहंकारी बनिए, आपके अंदर इतना अहंकार होना चाहिए, खुदगर्जी वाला नहीं, मतलब आप ऐसे होने चाहिए कि मैं ये काम खुद कर लूंगा, मैं अपना काम खुद करूंगा, मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी होनी चाहिए कि मैं अपने काम करूं, मुझे किसी से मांगना ना पड़े, मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरी ग्रोथ को डेवलप करे। अगर आपके अंदर अहंकार नहीं होगा, मैं नहीं होगा, तो दुनिया में जितने आविष्कार हुए हैं वो नहीं होते।
जी
मैं कुछ करके दिखाऊंगा ये वाली फीलिंग अगर नहीं होगी तो नहीं। क्रोध, डर, ये सब हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं कि जब आपको कोई आपके सेल्फ एस्टीम पे या आपके किसी ऐसी चीज पे आ जाए तो आप उसे क्रोध करके रोक दीजिए वहीं पे। आपके आपको फिजिकली अब्यूज कर रहा हो, आपको इमोशनल अब्यूज कर रहा हो, तो आप उसे क्रोध करके रोकिए कि मुझे परेशानी हो रही है तो मैं आपको करूं रोकता हूँ,
जी
ठीक है। तो ये इमोशंस का ये यूज है, लेकिन अब क्या करता है, हम इन इमोशन को कैसे यूज करते हैं, हम इन इमोशन को यूज करते हैं दूसरे पे अथॉरिटी दिखाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ऑब्वियसली है कि ये सारे इमोशंस आप अपने जैसे होता है ना कि शक्ति मिली और आपने उस शक्ति का मिसयूज कर लिया,
जी
तो सामने वाले के लिए वो इमोशन जो आपने किए वो निगेटिव हो गए। वही इमोशंस उसने आपके लिए जब गलत तरीके से इस्तेमाल किए तो आपके लिए निगेटिव हो गए, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट ही नहीं होंगे अगर आप अपने इमोशंस को पहचानना सीख लेंगे, उनका सही इस्तेमाल करना सीख लेंगे। तो ना आपको कभी हमेशा पॉजिटिव बने रहने का, जो ये कहा गया है ना कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो ये हमारे इमोशन है, ये हमारे डोपामाइन हार्मोन से चल रहे हैं। तो क्या है कि ये तो ऊपर नीचे आते जाते रहेंगे। आप हमेशा सारे दिन अगर कहा जाए तो सारे दिन आप हंस नहीं सकते हैं और पूरे 24 घंटे आप रो नहीं सकते।
जी
आपको कभी डर लगेगा, कभी आपको बड़ा प्यार आएगा किसी पे, आपको कभी गुस्सा भी आएगा। तो इन इमोशंस के साथ आप बहिए, इंजॉय करिए इन इमोशंस को। बस ये याद रखिए कि आपके इमोशंस और वो किसी के लिए निगेटिव ना हो जाएं। उनका इस्तेमाल आप सोच के करिए, उन इमोशंस को पहचानिए कि आप में ये जलन आ रही है, ये ईर्ष्या आ रही है, इस ईर्ष्या से कहीं आप कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं किसी को। जो फीलिंग है वो उनको आप टैग करना शुरू करिए। ये जैसे मैं अपने बच्चे को तो बचपन से ये बता देती थी कि ये वाला इमोशन जो है ना, ये देखो ये जो तो बातें करती थी तो मैं उसे तुरंत तो पहचानती थी, ये इमोशन को पहचानो, क्या है ये इमोशन तुम्हारा, तो वो ऐसे कहती थी क्योंकि बुली होके आती थी स्कूल से तो बड़ी गुस्सा में आती। हमने को देखो एंगर है, और एंगर है तो एंगर एक्सप्रेस करो,
जी
क्रोधी होना बुरा नहीं है, लेकिन उसको किस जगह निकालना है, कैसे निकालना है, इसका तरीका बस सीखिए आप।
जी मैम,
तो निगेटिव एंड पॉजिटिव मेरे ख्याल से कुछ होता नहीं है।
ओके मैम, तो मैम स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपका क्या बिलीव है?
स्पिरिचुअलिटी को मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेरा तो बहुत ज्यादा ही रुझान रहता है। मैं हमेशा ये भी नहीं है कि मैं कर्मकांड करती हूँ, मंदिरों में बहुत जाती हूँ या मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, इवन मैं व्रत वगैरह भी नहीं कर पाती, मेरी फिजिकल हेल्थ मुझे अलाउ नहीं करती। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल जो है इंसान है और हम सब इंसान हैं, तो हमें सब में सेम वही गुण है,
जी
अच्छे भी बुरे भी। और आप जितना अच्छे गुणों में शक्ति डालेंगे, उनमें आप डालेंगे, तो आप अपने को पावरफुल करेंगे, इम्पावर करेंगे, और वो आप दूसरों की मदद के साथ के लिए करिए। हम ज्यादातर क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं कि पूजा पाठ करने वाला, मेडिटेशन सारे दिन करने वाला, और ये नहीं, मैं उतनी ही डिसिप्लिन भी हूँ, मैं उतना लोगों को समझाती भी हूँ, लेकिन हाँ, जो इंसानी गुण है अपनी क्षमताओं में, ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत अपनी क्षमताओं से बढ़ के काम करिए, आप जहाँ हैं जितना है दूसरों की मदद करिए, दूसरों को समझिए, उनके जितनी आप काम आ सकते हैं, आप उनके बारे में जितना समझ सकते हैं उनको बैठ के सुन लीजिए, समझ लीजिए। मेरे मेरे लिए मीनिंग यही है। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में मैं और कोई चीज को नहीं समझती। मुझे लगता है अगर कोई मेरे आसपास है तो मुझसे उसे डर नहीं लगना चाहिए, उससे मुझे कोई मुझे ये देख के ना कहे कि अरे मुझे इनको देख के डर लगता है, ये मेरे पास ना आए, या ये कंट्रोल वाली फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। इंसान है, इंसान बन के रहिए, और लोगों की जितनी आपके अंदर हो, आपने जो सीखा हो वो आप समझाएं, सिखाएं, दैट्स इट।
ओके मैम, तो क्या फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का कोई कनेक्शन होता है, और लाइफ स्टाइल चॉइसेस किस तरह से ओवरऑल वेल बीइंग पर असर डालती हैं?
हाँ, मेंटल हेल्थ का सीधा असर हमारी हेल्थ फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे आप लगातार किसी बात को लेके सोच विचार में हैं, उदास होते चले गए, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका सेल्फ एस्टीम, सपोज टीचर्स ने कह दिया हो, नहीं ध्यान रखते हैं वो, और चार लोगों के बीच में बच्चे से कह देते हैं अच्छा तुम, क्योंकि वो अपने अपने सब्जेक्ट को सोचते हैं कि मेरे सब्जेक्ट में मेरा बच्चा पास हो जाए,
जी
अदर सब्जेक्ट को वैल्यू नहीं देते, तो उन्होंने जैसे कह दिया कि अरे तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। घर आए तो पेरेंट्स ने भी कुछ कह दिया, सपोज पीटीएम में वो कुछ सुन के आए तो उन्होंने भी कह दिया, तो बच्चा लगातार अगर ये सब बातें सुन रहा है, उदास हो रहा है, तो धीरे धीरे उसके काम करने की शक्ति, इच्छाएं पे आपको बदलाव दिखाई देने लगेगा, वो काम करने की इच्छा में असर आने लगेगा, उसकी क्वालिटी पे असर आने लगेगा, और वो नए काम करने में या और कई काम करने में वो अपने को इम्पावर ही नहीं कर पाएगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो घर पे बेड पे सिर्फ लेटा रह सकता है, सोता रह सकता है, उसके अंदर कोई भी चीज नहीं आएगी। तो ये चीजें जो है, फिर आपकी आदतें हो गई, जैसे आपने लाइफ स्टाइल चॉइस में बात करी, तो आपकी आदतें जो होती हैं, जैसे देर रात तक सोना है, स्क्रीन टाइम है, आपका खान पान है, सब कुछ है, तो ये सब भी आपकी मेंटल हेल्थ पे डायरेक्ट असर करती है, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ रेस्ट ही नहीं पा रही है, आप इंटरटेनमेंट में स्क्रीन टाइम को बढ़ाते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कब बंद करना है, तो आप उसको देखते जा रहे हैं, आप इंटरटेन होते जा रहे हैं, आपका लाइफ स्पैन जो है, स्क्रीन स्पैन, आपका पेशेंस स्पैन कम है, आप तुरंत रील को चला रहे हैं और एक एक घंटा दो दो घंटा कर रहे हैं, आप थके जा रहे हैं, आपका ब्रेन थका जा रहा है, लेकिन आप पता ही नहीं चला रात के 2 कब बज गया, तो उसको एक प्रॉपर नींद नहीं मिली, और मॉर्निंग में फिर आप स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, उसी सारे दिन उसमें, तो जब आप फिजिकल हेल्थ, अपने रूटीन लाइफ, नींद नहीं प्रॉपर ले रहे हैं, आप टाइम पे अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, तो इन सब का असर आपकी हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ दोनों पे पड़ने लगेगा।
तो मैम, अगर कोई पर्सन मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है तो उसे कैसे पता चल सकता है, या वो कौन सा पर्टिकुलर मोमेंट होता है जब उसे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से कंसर्न कर लेना चाहिए?
देखिए, बार बार में इरिटेशन आ जाए, किसी भी काम में आपका जब मन ना लगे, किसी भी से बात करने मिलने की इच्छा ना करे, घर से बाहर जाने, काम या स्कूल कॉलेज जाने का भी मन ना हो, या आपका अपना ही कोई मन का काम भी करने की आपकी इच्छा ना हो, कोई खुशी आप फील ना कर पा रहे हो, कि आपको कोई भी काम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी भी देख रहे हैं, गाने भी बज रहे हैं, तब भी आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, कुछ अच्छा खा रहे हैं उसमें भी आपका डोपामाइन नहीं अच्छा आ रहा है, सेरोटीन नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी चीज में अपने को खुश नहीं कर पा रहे, एफर्ट डाल रहे लेकिन खुश नहीं फील कर पा रहे, तो इन संकेतों को जरूर समझिए और तुरंत ही किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को समझिए, उसके पास जाइए।
ऑल राइट मैम, तो एट लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लोगों को जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, एंड पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगी?
मैं बस ये कहना चाहूंगी मृदुल कि आप अपने इमोशंस थॉट को खुद चेक करते रहिए। जब हम अवेयर हो जाते हैं अपने थॉट्स के लिए,
जी
तो हम हर बात पे रिएक्ट कैसे करें, उसका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम तनाव में आ जाएंगे, दूसरा वाला आए ना आए, जैसे हम ट्रैफिक चला रहे हैं तो हम अपनी गाड़ी पे कंट्रोल रखते हैं,
जी
पूरा कंट्रोल हमारा अपनी गाड़ी पे होता है, हमें कहीं ना कहीं ये जरूर माइंड में होता है कि हमें सामने की ड्राइवर पे भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है,
जी
तो हम अपनी स्पीड अपना कंट्रोल अपनी गाड़ी पे रखते हैं। वैसे ही अगर आप अपने थॉट्स पे अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे जिस दिन, कि हमारा रिएक्शंस क्या हुआ, एक ने एक्शन लिया तो मेरा रिएक्शन क्या हुआ, और उससे मुझे तनाव आएगा, इरिटेशन आएगा, तो मेरे मूड स्विंग्स खराब होंगे, मेरा टाइम खराब होगा और मुझे उस पॉपअप होने में कितना टाइम लगेगा।
जी
तो जब आप अपने पे काम करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली ये धीरे धीरे बातें ये अपने आप ही कम हो जाएंगी, आपके अपने थॉट की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। दूसरा कि काफी हद तक हम कम्युनिकेट करना भूल जाते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब खाना पानी स्कूल बातें, हम डीप थॉट की बातें करते ही नहीं, डीप टॉक्स करते ही नहीं, जैसे ही आप किसी से करने जाइए तो नॉर्मली लोग उस बात को अंडर कारपेट छुपा देते हैं,
जी
जैसे वो है ही नहीं बात, कि अरे नहीं, इस बात को छोड़ो, वो बात तो उस दिन हो गई थी, अब छोड़ो उस पर बात ही नहीं करनी। नहीं, अगर कोई आपसे बात करने आया है तो आपको बुरी लगे चाहे अच्छी, वो बात बिल्कुल ही, जैसे होता है ना कि नाली अगर है
जी
तो उसको साफ करने के लिए आपका हाथ गंदा होगा ही,
जी
तो
मैम
आपका मूड खराब होगा ही उस पुरानी बात को सॉल्व करने में, उससे डरिए मत कि अरे हमारा फिर से बात वही सब याद आ जाएगी और मेरा मूड खराब हो जाएगा, तो इससे बचें। नहीं, आप उसको सॉल्व करते समय मूड खराब होगा, लेकिन एट द पॉइंट आप जैसे ही वो क्लीन कर लेंगे बात दूसरे के साथ, आपकी तुरंत वो पुरानी नोट खत्म हो जाएगी, पुरानी चीज खत्म होके आप हैप्पी फील करेंगे। और पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज प्लीज, बच्चे आपको देख रहे हैं, आपकी सुन नहीं रहे, तो अपने एक्शंस पे अपनी चीजों पे जरूर ध्यान दीजिए, बच्चे अनुकरण करते हैं, बच्चे आपको देख रहे हैं, वो बहरे गूंगे नहीं है। मैं बहुत परेशान होती हूँ कि अगर आपको फोन पे किसी से भी, पेरेंट्स मदर और फादर किसी से भी बात कर रहे होते हैं, चाहे ऑफिस में और चाहे वो किसी लेडी टू लेडी टॉक कर रही हैं, जिसको हम लोग पंचायत करते हैं, रिलेशनशिप में बात कर रही हैं, प्लीज एक प्राइवेसी मेंटेन करिए, अपने रूम में जाइए और बच्चों के सामने नहीं करिए, क्योंकि वही सारी चीजें वो बच्चे सुन रहे होते हैं, और वो फिर क्योंकि वो आप बात कर रहे हैं और सामने वही पसंद आता है, तो आप उसके साथ बहुत अच्छे से फोटो खिंचा रहे होते हैं, उसको पार्टी में खिला रहे होते हैं, तो बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ये मेरे पेरेंट्स कर क्या रहे हैं, अभी तो इनको फोन पे क्या बातें कर रहे थे और सामने क्या कर रहे हैं, तो ये होगा ही होगा, आपको डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, आप समाज में रह रहे हैं, लेकिन प्लीज इन सब चीजों को बच्चों के सामने मत करिए, उनपे बहुत बहुत गलत असर पड़ता है।
ऑल राइट मैम, थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच।
उम्मीद है आपको हमारी मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैलाने की छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। ऐसे ही और वैल्यू एडिशन करने वाले और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड सुनने के लिए धम्रजु सचान शो को फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।